हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम
राम राम
राम राम हरे हरे
राम राम हरे हरे
हरे कृष्णा। जनक भाई ब्रजलाल जी पारेख के निवास स्थान पे श्रद्धा से सत्संग के लिए पधारे हुए आप सब महानुभावों का स्वागत करते हैं अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ इस्कान की ओर से, और धन्यवाद करते हैं आप सबका आज पधारने के लिए संस्था की ओर से आयोजित भागवत कथा के आयोजन में सहयोग के लिए, और विशेष रूप से कृष्ण कथा में रुचि जो आपकी है, अपने घर के दरवाजे रात को खोले हैं और हरि कथा करने के लिए आप सब उत्सुक हैं, आपका आभार प्रकट करते हैं। जीवन में संतुष्टि, सुख और शांति, आनंद, ये तो आत्मा के स्तर पे है। शरीर में ये सब चीजें नहीं है। हम हैं, हमारे को शरीर मिला है, वो मानो के कपड़ा है। भगवद गीता के शब्दों में वांसांत वांसांति जीर्णानि जैसे कपड़ा होता है, तो कपड़े को खुशी नहीं होती है, पहनने वाले को खुशी होती है। कपड़ा सुंदर कितना भी हो, कास्टली कितना भी कपड़ा हो, तो कपड़ा खुश नहीं होता है, पहनने वाले को खुशी होती है। ये बात ठीक है ना? आभूषण है, ज्वेलरी है, तो ज्वेलरी को खुशी नहीं होती है, पहनने वाले को खुशी होती है। तो ये बहुत बड़ा सिद्धांत जीवन में समझ में आ जाए कि असल में आनंद जो है वो आत्मा की अनुभूति है, वो शरीर की अनुभूति नहीं है। और हम सब लोग जिस खोज में हैं, वो तो हैं आनंद की खोज में और शांति की खोज में और सुख की खोज में। इस दुनिया में सबसे पूछो कि हमें सुख चाहिए, यही कहेंगे कि सुख चाहिए कि नहीं चाहिए, तो उनसे पूछो कि सुख चाहिए कहाँ, आपको सुख कहाँ चाहिए? सिर्फ घर में चाहिए? नहीं नहीं, दुकान पे नहीं चाहिए, और कहाँ चाहिए? वो सब जगह चाहिए। भाई आपको सुख चाहिए कहाँ चाहिए, तो उत्तर आएगा सब जगह चाहिए। ये सही है कि नहीं? कब चाहिए सुख आपको? सुबह चाहिए, शाम को चाहिए, सब समय चाहिए? उत्तर ये आएगा सब समय चाहिए। सुख सदा के लिए चाहिए, सब जगह चाहिए, और सब सबसे चाहिए, ये उत्तर आएगा कि नहीं आएगा? अब बताइए कि सब जगह कौन है, सदा कौन है? तो उसी से जब सुख तो उसी से मिलेगा, ये तो वो सब जगह और सदा तो केवल एक भगवान है, और तो कोई नहीं। ये तो उत्तर सीधा सा ये आएगा, हमें सुख चाहिए और सदा के लिए चाहिए और सब जगह चाहिए, वो तो केवल एक भगवान है। इसका मतलब सुख का स्रोत तो भगवान है। सुख को चाहो सदा शरण राम की लो। राम का अर्थ होता है आनंद। राम शब्द जो संस्कृत का है, वो उससे शब्द निकलता है रमण का, जो बच्चे खेलते हैं जिसमें इतने मगन हो जाते हैं कि भोजन भूल जाते हैं बच्चे खिलौने में। तो राम का मतलब है आदमी आत्मा के आनंद में इतना मगन हो जाता है, फिर उसको संसार उसको असली सुख मिलने लगता है। तो जो सुख सदा चाहिए, सब जगह चाहिए, सब में चाहिए, वो तो फिर एक ही रास्ता है उसका, कि जो सब जगह हो, सब जगह और सब समय हो, वो तो केवल एक भगवान है। और आत्मा है भगवान का अंश, ममैव अंश जीव लोके जीव भूत सनातन। ये भगवद गीता का एक श्लोक है कि सारे जीव मेरे अंश हैं। अंश का अर्थ होता है जैसे बाप का बेटा अंश है, बेटा बाप का अंश माना जाता है। इसलिए भगवान ने फिर एकदम एकदम कह दिया अहम बीज प्रदा पिता, बीज देने वाला पिता मैं हूं। इसका मतलब बीज आत्मा है, शरीर मां प्रकृति ने दिया है, बीज पिता भगवान ने दिया है। बीज देने वाला पिता है, शरीर बनाने वाली माता है। तो प्रकृति ने शरीर दिया है और भगवान ने बीज दिया है, पिता भगवान है और सुखदाता भी भगवान है। हम हमारी पहचान पहले संसार में लोग सुख शरीर से चाहते हैं, वो सदा नहीं हो सकता है। शरीर में वो सुख एक जैसा सुख बचपन में सुख खिलौनों से आता है, फिर खिलौने घर में वही पड़े हैं, आप देखते भी नहीं। इसका मतलब वो टेम्पररी जो सुख शरीर का है वो तो क्षणिक है, वो तो बदल जाएगा थोड़े दिनों में। खिलौने आपको अभी आपके घर में आपके खिलौने जिसके लिए कितनी बार आप लड़े थे अभी उसको हाथ ही नहीं लगाते, फिर एक समय में खिलौने चले गए, फिर जीवित खिलौनों के साथ थोड़े दिनों के लिए आनंद कर लेते हैं, फिर एक समय आएगी तो उसके बाद उसमें भी हमारा बचपन में कहते हैं लड़के छोटे बच्चे होते हैं ना, वो कहते हैं माँ मेरी है, वो कहते हैं नहीं माँ मेरी है, आपस में लड़ाई करते हैं, और जब बड़े होते हैं तब कहते हैं माँ तेरी है। अब तू ले जाते हैं माँ को बाप, बचपन में मेरी है और बुढ़ापे में तेरी है। बचपन में ऐसा भाव होता है कि मेरी आपस में लड़ते नहीं मेरी है, गोद में मैं बैठूंगा, और बदलते बदलते क्योंकि ये शरीर ये शरीर के स्तर की बातें हैं। तो इसलिए पहला जीवन में फार्मूला दो और दो चार राइट लिखेंगे ना तो जितनी गणित करोगे सही जवाब आएगा, और दो और दो तीन लिख दिया तो कितना भी अच्छा करो अंत में तो उत्तर गलत ही आएगा। तो आनंद का स्रोत आत्मा में है और वो केवल परमात्मा से भगवान से मिलेगा, बाकी कहीं भी नहीं। ये एक पहला जीवन में जीवन का एक लक्ष्य समझ लेना चाहिए। इसलिए हमारे पास सबके पास 24 घंटे हैं, किसी के पास 24.5 घंटे 25 घंटे भी नहीं है। इसमें से वैदिक काल में 8 घंटे शरीर के लिए रखे हैं, सोना है नहाना है खाना है, 8 घंटे में आपको इसमें पूरा करना है। 8 घंटे शरीर के निर्वाह के लिए हैं कि शरीर को चलाना है तो कोई धंधा काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, 8 घंटा स्टैंडर्ड टाइम उसके लिए रखा है। 8 घंटा असल में जो बाकी 8 घंटा है वो असल में हमारे अपने लिए है। 2 भाग देते हैं शरीर को, एक भाग आत्मा के लिए होना चाहिए। ये पुराने जमाने की कैलकुलेशन है, 8 आवर्स शरीर के लिए, 8 घंटे शरीर के निर्वाह पालन पोषण के लिए, बाकी जो 8 घंटे वो हमारे लिए हैं। हमारे अपने लिए तो कुछ होना चाहिए ना, तो हम हैं कौन पहले ये तो पता करें। जब शरीर की अलग किए तो हमारे 8 घंटे जो हैं उसको अगर आप ठीक तरह से बांटो, 2 घंटे आप हमारे होने का अस्तित्व, हमारी आत्मा है, आत्मा है तो हम है, आत्मा नहीं है तो शरीर समाप्त हो गया। तो आत्म चिंतन के लिए 2 घंटे का टाइम अगर कोई निकाल सकता है तो वो धनी आदमी है, क्योंकि आत्मा धन ही असली धन है। जो धन सदा साथ रहता है वो तो केवल आत्म धन रहता है, बाकी तो संसार का धन सब यही रह जाता है। तो 2 घंटे जो रोज का आत्म धन के लिए, आत्म चिंतन के लिए, भगवान स्मरण के लिए निकाल सकता है वो असल में संतुष्ट है, शांत है, धनी है, आनंदमय है। 2 घंटे हमारे अपने शरीर को ठीक रखने के लिए, तो आत्म चिंतन के बाद शरीर भी ठीक होगा तो सुखी रहेंगे। तो शरीर के लिए भी कम से कम घंटा सवा घंटा रोज का टाइम निकालना चाहिए हमको, जिसको कहते हैं चलना चाहिए, जाके कहीं पार्क में थोड़ा व्यायाम करना चाहिए, नहीं तो अभी काम करेगा बुढ़ापे में टूट जाएगा। हमको एक मैसेज आया, हम रोज बोलते हैं उसको, हमारे दिल ने हमको समाचार भेजा 24 घंटा तुम्हारे लिए मैं चलती हूँ, तुम एक घंटा अगर मेरे लिए नहीं चलोगे तो मैं चलना बंद कर दूंगी। बहुत अच्छा मैसेज है, दिल मेरी दिल ने मुझे समाचार भेजा 24 घंटे तेरे लिए मैं चल रही हूँ, तुम एक घंटा भी मेरे लिए नहीं चल सकते तो मैं तेरा साथ कैसे दे सकती हूँ। बहुत अच्छी बात है कि हमको शरीर को किसी भी तरह से थोड़ा सा चलना फिरना व्यायाम जरूरी है। ये अगर हम बचपन में नहीं करें, ये अगर ठीक तरह रेगुलर नहीं किया तो आगे चल के बहुत बड़ा शरीर कष्ट में हो गया तो फिर सुख कहाँ से मिलेगा। साउंड माइंड लिव्स इन ए साउंड बॉडी, शांत मन तो शांत शरीर में रहता, शरीर में दुख है तो शरीर परिवार में दुखी, सब भी दुखी हो गए, लेकिन ये भी कोई नहीं निकाल पाता है, देखना आप अच्छी तरह से। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है कि हम हैं तो हमारा परिवार हमारे साथ जुड़ता है। परिवार का मतलब बच्चे, स्त्री, भाई, बहन, सब ये परिवार जो हो गया, इसके लिए क्वालिटी टाइम होना चाहिए रोज का। बच्चों के साथ बैठने का टाइम होना चाहिए, परिवार के साथ बैठने का टाइम, वो है ही किसी के पास, ये सच है कि नहीं है। अब इसका परिणाम क्या निकला, चौथा हमारे को चाहिए धन, क्योंकि शरीर चलाना है, घर चलाना है, चौथे नंबर पे धन कर आता है, पहले नंबर पे आत्मा, दूसरे नंबर पे शरीर, तीसरे नंबर पे परिवार, चौथे नंबर पे धन। ये क्लासिफिक इसको ऐसे लिखना चाहिए, पहले आत्मा है तो हम हैं, आत्मा नहीं तो हम नहीं, तो फिर दुनिया रही तो हमारे किस काम की। फिर शरीर ठीक है तो सब परिवार सब कुछ ठीक है, शरीर ठीक नहीं तो सब दुखी हो गए। तीसरे नंबर पे परिवार में प्रेम नहीं तो सारा दिन काम करके घर में झगड़ा हो तो सारा दिन खराब हो गया कि नहीं हो गया, तो परिवार में प्रेम संगठन हो। चौथे नंबर पे धन चाहिए जिससे सब काम चले। अब दुनिया में क्या हो गया है, पहला नंबर चौथे नंबर को दे दिया। घोड़े के पीछे गाड़ी होगी तो घोड़ा खींचेगा, घोड़े के आगे गाड़ी रखोगे तो न घोड़ा चलेगा न गाड़ी चलेगी। अब पूरी दुनिया का काम क्या हो गया है, वो पैसे को इतना महत्व दे दिया है, आत्मा को भुला दिया शांति चली गई, शरीर को भुला दिया स्वस्थ चला गया, परिवार को भुला दिया परिवार के अंदर प्रेम चला गया। ये तीन चीजों की कुर्बानी दिया, तीन जीनों का बलिदान दिया है तब हमारे पास धन बहुत आ गया, लेकिन ये तीन चीजों की कमी हो गई। ये आपको लगता है कि हुई है कि नहीं हुई, शांति संतुष्टि चली गई, स्वस्थ भी नहीं, दवाई खानी पड़ रही है, सबको परेशानी उठानी पड़ रही है बेकार की, लेकिन सुबह आधा घंटा निकल के जाए पार्क तक एक चक्कर लगाए वो नहीं हो रहा है। और बच्चों को पकड़ के, इतने उम्र के बच्चों को पकड़ के आधा घंटा आप जाके पार्क में घूमो, इसको थोड़ा दौड़ाओ उधर, तो फिर आप देखो कि बच्चा भी आराम से घर में आके सो जाएगा, रात देर तक जगेगा नहीं, क्योंकि एनर्जी तो कहीं बर्न होनी चाहिए, लेकिन हम ये नहीं कर पाते। ये अगर टाइम टेबल अगर मैनेज जीवन में करें तो हमारा जीवन जरा संतुलित होगा, नहीं तो जीवन में संतुलन बैलेंस नहीं होता है। जब जीवन में बैलेंस नहीं होता है तो फिर हम काम करने के बाद भी ये तीन चीजों का अभाव अपने जीवन में सदा रहता है, शांति सुख का अभाव रहता है, तो फिर कहीं ना कहीं ढूंढते हैं शांति। फिर लोग क्या करते हैं, वो सुख और शांति के लिए कोई नशे का सहारा लेता है, कि रात को थका हुआ शराब पी के सो जाता है। तो ये सब काय के लिए आती है, क्योंकि उन्होंने ये असली चीजों को भुला दिया, इसलिए गलत चीजों का सहारा लेना पड़ गया और बहुत से लोग इस रास्ते पे चले गए। अभी भी ये तो भगवान की दया है कि आप लोग आध्यात्मिकता से जुड़े हुए हो, इसलिए बहुत सी बुराइयों से बचे हुए हो, नहीं तो धन अपने साथ बहुत सी बुराइयां लाता है। भागवत में तो धन के अवगुण बहुत लिखे हैं, गुण बहुत कम लिखे हैं, अवगुण कमाने में परिश्रम, संभालने में परिश्रम, और जाए तो उससे ज्यादा परिश्रम, तो 14 परेशानियां लिखी हैं। तो लक्ष्मी है उसका नाम, तो नारायण के संग तो बड़ी आनंद में रह सकती है, लेकिन नारायण से अलग करके भोगने का प्रयास करने वाले के लिए वो लक्ष्मी उल्लू के ऊपर चढ़ती आती है। उस लक्ष्मी का वाहन उल्लू जो नारायण से अलग आती है, वो आदमी के सारे मर्यादाएं, सारे कुल नीति धर्म सबको भुला देती है। और ऐसा ही दुनिया के अंदर आप देख लीजिए, भागवत में जहां नल कुबेर और मणिग्रीव का प्रसंग आता है, वहां नारद का एक गीत है, उसका नाम ही नारद गीत है। वो धन के कुबेर के बेटे हैं, जो धन का अधिपति है, और उसके बाद शंकर जी के अनुचर हैं, और उसके बाद नंदा मंदाकिनी नदी जो गंगा है जिसमें लोग स्नान करके पवित्र होने जाते हैं, उसी के अंदर वो अप्सराओं के साथ नंगे नहा रहे हैं। और नारद जी जाता है, अप्सराएं तो कपड़ा ढक देती है, लेकिन वो ऐसे कैसे नंगे खड़े निर्वस्त्र। नारद ने कहा, देवताओं के पुत्र हो और ये तुम्हारा हाल है। और नारद ने एकदम कहा कि मेरे को शराब तो नहीं देना है, तो मैं गा के देखूं, अगर गा सकता हूं तो क्रोध नहीं है, क्रोध में गा नहीं सकता है, और रोने के समय खा नहीं सकता है, जो रोएगा तो खा नहीं सकता है और क्रोध में गा नहीं सकता है। तो नारद ने कहा, नहीं मैं गा तो अच्छा रहा हूं, तो बोला अनुग्रह इनके ऊपर करना है। तब नारद ने कहा, चार चीजों का नशा बहुत खराब होता है दुनिया में। सबसे बड़ा नशा सुंदरता का नशा, उच्च कुल का नशा, विद्या का नशा और धन का नशा। ये चार नशे हैं अपने आप में। इन चार नशों में सबसे ज्यादा धन मद अंध, जो धन के नशे का अंध आ जाता है आदमी में, तब उसको न मां की, न पिता की, न धर्म की, न गुरु की, न भगवान की किसी की परवाह नहीं रहती। तो इनको ऐसा हो गया है, अब इनकी चिकित्सा करनी चाहिए। ये बच्चे हैं, चिकित्सा उसने अच्छी की, भगवान श्री कृष्ण के कृपा के पात्र बना दिए। आज वो भगवान श्री कृष्ण का गुणगान कर रहे हैं दोनों, लेकिन चिकित्सा जब नारद जैसे गुरु ने की, तब ये उद्धार उनका हुआ। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आइए बेटा, आगे आ जाइए। हरे कृष्णा। बहन बहनों या आप ऊपर आके बैठिए, जो ऊपर से बैठ सकते हैं ऊपर बैठिए। क्या नाम है बहनों जी का?
रजनी भाई।
रजनी भाई, बहुत अच्छा। सो बात हम रजनी भाई ये कर रहे हैं कि जीवन में 24 घंटे सबको मिले हैं, 8 घंटे शरीर के लिए हैं कि खाओ पियो सो स्नान करो सब कुछ ठीक ठाक, 8 घंटे कमाने के लिए हैं घर चलाओ, और 8 घंटे बाकी हमारे अपने लिए हैं। तो हमारे अपने जो लिए घंटे 8 हैं, उसको कहाँ जाते हैं उसकी खोज करो, क्योंकि टाइम इतना कीमती है दुनिया में, करोड़ रुपया देके एक मिनट खरीदा नहीं जा सकता। जब सिकंदर भारत में विश्व विजेता होके आया तो बीमार हो गया, तो अपने सेनापति को कहा, देखो मैं विश्व विजेता हूं, आधा संसार मैंने विजय किया है, आपको देता हूं, आप एक महीना आपके जीवन का दो, मैं वापस यूनान जाऊंगा, मेरी मां से मिलना है। सेनापति ने कहा, जीवन का महीना मैं महाराज कैसे आपको दे सकता हूं? तो बोला, एक दिन मेरे को तेरे जीवन का दो, मैं तेरे को सारी दुनिया देता हूं, जो मैंने अपनी बाहुबल से विजय किया है, मैं अपनी मां को चिट्ठी लिखूं। बोले, महाराज एक दिन भी पूरी दुनिया के बदले में देना संभव नहीं है। तब सिकंदर ने लिखा था, सुनो दुनिया वालों, जब मेरा शरीर छूटे और मुझे कब्र में डालो तो ये लिख देना, विश्व विजेता सिकंदर खाली हाथ दुनिया में गया। और उस वक्त सिकंदर ने ये शब्द कहे थे, जिंदगी के पूरे बल से मैंने विश्व का विजय किया, मैं विश्व विजेता बना, आज सारा विश्व दांव पे लगा रहा हूं, एक दिन नहीं मिलता है, एक दिन जीवन का नहीं मिलता है, बड़ा आश्चर्य है। तब कहा कि देखो दुनिया वाले, सुन लेना कि समय जो हमारा, कौन ये 8 घंटा हमारा कहां जाता है, ये हमारा है। जैसे आपका अपना धन है, सबसे ज्यादा बड़ा धन हमारा समय है। समय इतना बहुमूल्य, एक सांस जो है ना, सांस की कीमत करोड़ों से चुकाई नहीं जाती। इसलिए तो लिखा है, श्वास श्वास सिमर गोविंद, एक एक सांस में अगर भगवान का नाम है तो, नहीं है तो सांस व्यर्थ चला गया। एक लकड़ी काटने वाला था, और महाराज कहीं भूखा अचानक उसके खेत में आ गया, उसने महाराज को रोटी खिला दी। महाराज ने कहा, रंधा क्या करता? बोला, लकड़ी काटता हूं। बोला, छोड़ तुम ये काम, तुम्हें मेरी जान बचाई, चलो बहुत बड़ा बगीचा दे दिया। वो रोज लकड़ी काट के बाजार में जाए, बेच के आए खाए। एक दिन महाराज पूछने देखने गया तो बोले तुम्हारा अभी हालत ये है? बोले क्यों महाराज? जो लकड़ी काटता हूँ बेच के आता हूँ। बोले कितने पैसे मिलते हैं? बोले 2-4 रुपए मिलते हैं। बोले मूर्ख, ये चंदन का वन आपको दिया था, इसकी एक एक लकड़ी लाखों रुपए की है, तुम मूर्ख इसको समझे नहीं, रोज काट के बेच के आते हो। ये एक लकड़ी जो तेरे पूरे परिवार के, तुम्हारे 3 पीढ़ियां उसमें सुखी हो रखी, तुमने आधा वन पूरा काट दिया, अभी तुम्हारा जीवन। तो ये हमारे जो जो हमारा सांस है तो चंदन के वन से भी जरा कीमती है, इसको व्यर्थ में गंवा दें, उसकी बदले में किसी चीज से भी ये नहीं मिलता है। बहुत दुर्लभ है ये जो एक सांस है, ये बहुत दुर्लभ है, ये किसी कीमत से मिल नहीं सकता है। ये कहाँ जा रहा है, कौन खा के जा रहा है, हमको उसको पहले ढूंढ के निकालना चाहिए। तब हम कह रहे थे हमारा समय जो है, हमारे लिए जो समय हमारा अपना है, उसमें से कुछ समय आत्मचिंतन के लिए होना चाहिए, तभी हम शांति और संतुष्टि को प्राप्त करेंगे। इसलिए भारत महान था कि भारत में संतुष्टि थी। भारत का व्यक्ति कभी भी भारत से सीमा के बाहर आक्रमण करके नहीं गया, कहीं से लुटेरा बन के लूट के नहीं लाया, दुनिया वाले वहां लूटने के लिए आए, भारत से कभी बाहर कहीं नहीं। क्यों? क्योंकि संतुष्ट था, उसके पास शांति थी, संतुष्टि थी, आत्मधन था। और दुनिया के लोग तो आए, कितने अर्गुन आए, तर्क आए, अंग्रेज आए, सब वहीं से लेके गए। और जब तक भारत उनके साथ था, वो दुनिया सारी के ऊपर राज करते थे, जब भारत ने हाथ निकालता तो सब कुछ समाप्त हो गया। आज तो बेचारे इतने सुकड़ के बैठ गए, तो असली धन तो यहाँ था, हमारे लोगों ने काम किया, मरे हमारे लोग, लड़े हमारे लोग, राज उन्होंने किए। जहां जहां दुनिया में देखो हमारे लोगों को वो ले गए। तो हमारा अपना समय कुछ आत्मचिंतन के लिए निश्चित रूप से निकलना चाहिए, कुछ हमारे शरीर के लिए निकलना चाहिए। इस्कॉन के संस्थापक श्री प्रभुपाद जी एक बार बीमार थे, वैद्य जी ने देख के कहा कि स्वामी जी चलते हैं। प्रभुपाद ने ये सुना, उस दिन से जब तक जिए रोज सुबह कहीं भी हो उनको 6:30 बजे मॉर्निंग वॉक पे जाना है और 7:15 तक आना है। 7:15 की मंदिर के दर्शन की घंटी बजेगी, वो बिल्कुल मंदिर में पहुंचेंगे, जाओगे, टाइम देखने की जरूरत नहीं, वो आ गए तो 7:15। चाहे बर्फ के इलाके में अमेरिका में हो तब कोट पहन के भी चलने जाना। फिर कहा मेरे जीवन को मेरा चलना जो सुबह मैं चलता हूं, मेरा मसाज जो है मॉर्निंग वॉक मसाज, वो रोज को 11 बजे पूरे शरीर को तेल से मालिश कराते थे वो उनके सिस्टम। ये पुराने आयुर्वेद में इसको बोलते हैं अभ्यंग, अभ्यंगम का मतलब तेल से सर्दी में कम से कम 2 बार दिन में, गर्मी में 1 बार ऑयल को लगाना तेल को, कम से कम नहीं तो छोटा अभ्यंग, पांव के अंगूठे को तेल लगाना, कान को तेल लगाना, 2-4 जगहों पे ऐसे तेल लगा के स्नान करना, ये पुराना शरीर के स्वस्थ रखने का पहला साधन था। तुम्हारा क्या, एक तो मेरा सुबह का चलना और दूसरा मेरा ये मालिश और तीसरा वो आयुर्वेदिक कुछ दवाई ले, ये मेरे जीवन को चला रहे, नहीं तो मेरा जीवन चलना मुश्किल है। तब से वो चलना उन्होंने कभी नहीं बंद किया, दुनिया में किसी भी कोने में हो तो सुबह चलने जाने का नियम उन्होंने तोड़ा नहीं कभी। एक बार सिर्फ सुन लिया कि मेरे बीमारी का कारण मेरे एक जगह बैठना है। अभी 2 दिन से हम कह रहे थे खाने को तो हमारा वही भारी खाना पुराना घी वाला है, लेकिन चलना हमारा बिल्कुल बंद हो गया। तो 2 दिन से हमारे को यही बात रोज याद आती है, पहले हम तेल खाते थे हम चलते थे, अब तो गाड़ी तेल खाती है वो चलती है, हम तो नहीं चलते हैं, तेल वो खाती है तो उसको चलना पड़ता है, हम चलेंगे तो सुखी रहेंगे। तो जीवन में कुछ आत्मा के लिए समय निकालना चाहिए चिंतन के लिए, तब सुख और संतुष्टि और शांति आएगी। कुछ अपने शरीर को चलाना चाहिए, घर में हो सके बाहर जा सको तो बहुत अच्छा है खुली हवा में, लेकिन ये एक नियम बना लेना चाहिए, अपना टाइम है कहीं भी निकाल के, पहले हम हैं तो दुनिया है, हम नहीं है तो दुनिया किस काम की। तो हमारे होने के लिए हमको रहना चाहिए, तब आत्मा के अस्तित्व में हम रहते हैं, और शरीर को स्वस्थ रहना चाहिए। दूसरा ये है, हरे कृष्ण, आइए समानी सीट आपने आपकी रिजर्व है, हाँ हाँ हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम हरे राम 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 हरे
हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे
हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्ण 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 कृष्ण
बोलिए
हरे राम राम हरे हरे
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे
हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम राम हरे हरे
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे
हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे
हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा भगवान की
जय।
आप लोग आए तो हमको कीर्तन करने का मौका मिल गया। इसको संकीर्तन बोलते हैं, सब मिलके भगवान के नाम को साथ गाना। ये श्रीमद् भागवत का अंतिम श्लोक है। ये श्रीमद् भागवत का जो लास्ट श्लोक है उसका अर्थ है नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। भगवान के नाम का सब मिलकर गान करें तो जो भी पाप की वृत्तियां हैं, जो मन के अंदर अनादि काल से काम क्रोध लोभ मोह मत्सर जो हमको विचलित करते रहते हैं, वो सब भाग के चले जाते हैं। तो ये नाम संकीर्तन कलयुग का युग धर्म है। हरिहर नाम हरिहर नाम हरिहर नाम एव केवलम कलव नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिहंता। कलयुग में वह कोई रास्ता नहीं और कोई रास्ता नहीं और कोई रास्ता नहीं, केवल हरि का नाम हरि का नाम हरि का। कलयुग का मतलब है जो कलह को लाए, छोटी छोटी बात में जहां झगड़ा हो, परिवार में झगड़ा, बेटे बाप में झगड़ा, पति पत्नी में झगड़ा, देश देश में झगड़ा, कलह कलह का नाम ही कलयुग है। लेकिन एक ही कलयुग में भलाई है कि केशव लियते इति कली, जो केशव को बहुत सरलता से प्राप्त करा दे, ये कली का महान गुण है। कलयुग के सारे दोषों के बाद भी एक महागुण है। तो जो हम कह रहे थे हमारे पास 24 घंटे दिन रात में है, 8 घंटे शरीर के लिए सोना है, खाना है, पीना है, नहाना है, और 8 घंटे शरीर के लिए कमाना है, परिवार के लिए नौकरी करनी धंधा करना, 8 घंटे आपके अपने, और आप अपने में 3 भाग कर लो, आप आत्मा जो आपकी पहली पहचान है उसके चिंतन के लिए शांति का चाहिए, आनंद चाहिए, तो रोज आत्म चिंतन के लिए मंथन करना चाहिए, नाम स्मरण करना चाहिए, सत शास्त्र पढ़ना चाहिए, ठाकुर जी का सेवा करना चाहिए, ये आत्मा का टाइम निकालना चाहिए, तब हमारे जीवन में संतुष्टि शांति और आनंद का उदय होगा, जो है वो जाग जाएगा, अभी सोया हुआ है। और फिर दूसरा हमारा मैं आत्मा का जब कर लिया तो फिर ये शरीर है जो मेरे को लेके चलता है, ये गाड़ी है, मानो मैं मालिक हूँ गाड़ी का, तो ये मेरी गाड़ी है, तो गाड़ी की तो सर्विस सब कराते हैं, गाड़ी की सर्विस तो आप लोग उसका भी कोई लिखा है कि इतने दिन पे कराना है, ये गाड़ी रूपी शरीर की सर्विस भी तो करानी चाहिए ना, समय समय के ऊपर इसकी सर्विस करना भी जरूरी है, ये भी मशीन है, भगवत गीता में तो इसको कहा है यंत्र रूढ़ानी माया, ये यंत्र है, यंत्र का मतलब मशीन है, तो इसका भी जैसे मालिश कहा आपको, तेल मालिश इसका है, वॉकिंग है, थोड़ा व्यायाम है, ये निश्चित रूप से करना चाहिए और रेगुलर बेस पे करना चाहिए, ये अगर नहीं करेंगे तो ये शरीर हमारे को भगवान की भक्ति करने के साधन में भी काम नहीं देगा, वो तो शरीर भी तो ठीक होना चाहिए ना, तो आत्मा का चिंतन, शरीर के स्वस्थ का ध्यान, और फिर परिवार के लिए क्वालिटी टाइम, परिवार के लिए क्वालिटी टाइम का मतलब है बच्चों, आजकल जहां हम जाते हैं कथा करने, बच्चों को, बच्चे हमारे आज्ञा नहीं मानते हैं, बच्चे मानते नहीं, ये पकड़ के लाके एक ही बात सब पूछते हैं, आज्ञा बच्चे नहीं मानते, अरे भाई आप, एक हमारा मित्र डॉक्टर हमारा कलीग था, उसका पिता भी था, उसका बेटा भी था, उनको अहमदाबाद में मिला, मुझे बोलता डॉक्टर मेरे बेटे को बोलो मेरी बात नहीं मानता है, तो मैंने उसके बाप से बोला मैं तेरा बेटा तेरी बात मानता है, बोला ये नहीं मानता है तो ये वहां से मानेगा तो असल में कभी कभी कहीं जाते हैं घर में तो छोटे बच्चों को लाते हैं बड़े महाराज को प्रणाम करो, मैं उसको देखता हूँ, तू करेगा तो इसको कहने की जरूरत नहीं है, तुम्हें देख के ये अपने आम करेगा, इसको क्यों, तो मुर्गे की तरह दबा के दब भी जाएगा, गले से पकड़ के चौक रहा है नीचे, खुद करेगा तो वो अपने आप सीख जाएगा, बच्चा सीखता है जब बड़ों को करते हुए देखता है, तो अगर हम बड़ों का सम्मान करेंगे, आप सुबह अपने पिताजी का सुबह चरण छू के घर से जाएंगे, माता जी से आशीर्वाद लेके जाएंगे, तो आपके बेटे आपसे लेके जाएंगे, ये संसार का नहीं है, आप उदाहरण नहीं बनेंगे। भगवान श्री कृष्ण के दिनचर्या में द्वारका के विभाग में लिखा है भगवान सुबह उठ के पहले ध्यान करते थे, भगवान को क्या जरूरत है ध्यान करने की, हमको सिखाने के लिए पहले ध्यान करते थे, फिर नहा धो के दान करते थे दूसरा काम, तो उसके बाद अपने बड़े बुजुर्गों को चरण छूने जाते थे, वसुदेव देवकी के आशीर्वाद, रघुवर सिंह महाराज के, जितने बड़े सबके आज, फिर जाके आप इसमें काम करते थे। अब ये भागवत के अंदर लिखने की जरूरत क्या है, भगवान ने हमको सिखाया, ये भगवत गीता में जब भगवान कहते हैं यज्ञ आचरति श्रेष्ठ, जो श्रेष्ठ जैसे आचरण करते हैं वैसे सामान्य उसका लोग नकल करते हैं, और इस श्लोक के बाद भगवान कहते हैं मुझे दुनिया में कुछ करने के लिए नहीं है, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, किसी चीज का अभाव नहीं है, और कुछ मुझे चाहिए नहीं, फिर भी मैं सब नियम करता हूं, सब मर्यादा पालन करता हूं, क्योंकि मेरे को देख के लोग मर्यादा पालन मैं नहीं करूंगा तो लोग सारा वर्ण शंकर हो, तो भगवान ने ये सब क्यों किया, स्थापित करने के लिए एक भर घर परिवार कैसे हो, गृहस्थी को कैसे रहना चाहिए, भाई पुराने जमाने में कहते थे गृहस्थ के घर की पहली रोटी गाय के लिए निकलती थी और आखिरी रोटी कुत्ते के लिए जाती थी, अब तो गाय भी हम कुत्ते भी सभी हम ही खा के पूरा करते थे, सबका हिसाब खत्म हो गया, अब गाय मिलती नहीं है कुत्ते, तो ये इसका अर्थ क्या होता था, असल में ये हर गृहस्थी के घर में पानी भरते हुए, झाड़ू निकालते हुए, आग जलाते हुए, अनाज साफ करते हुए कई जीवों की हत्या होती है, उसको बोलते हैं पांच सोनो, सोनो का मतलब हत्या, पांच हत्याएं आने जाने अनजाने में हर गृहस्थी के घर में होती है, अब तो अनाज से तो हम खुद जीव निकालते देखा है ना, अनाज छोड़ते हैं तो निकालते हैं, झाड़ू निकालते, पानी भरते, आग जलाते, पहले धान कूटते, इसलिए पांच यज्ञ सब गृहस्थियों को करने होते, पांच यज्ञ हर गृहस्थी का धर्म, उसमें एक यज्ञ भूत यज्ञ कहलाता है, वो होता है पशु पक्षी को रोटी देना। ये उसमें एक क्योंकि मरते हैं हमारे हाथ से, तो पुराने लोग तो पहले जाके वो मकोड़ियों को दाना डाल के आते थे, कबूतरों को दाना डाल के आते थे, गाय के रोटी देते थे। ये भूत यज्ञ कहलाता है। और फिर अतिथि यज्ञ है, कोई मेहमान आ जाए तो उसको भोजन कराना है, ये दूसरा यज्ञ कहते हैं अतिथि। तीसरा होता है ऋषि यज्ञ, जिन्होंने हमारे को वेद शास्त्र दिया तो उसको पढ़ना चाहिए, तो इसको ऋषि यज्ञ बोलते हैं। देव यज्ञ, देवता जो हमारे को सारा कुछ दे रहे हैं, इसलिए समय समय के ऊपर उनका स्मरण करना चाहिए। असल में देवों के आदि देव भगवान का रोज स्मरण करना चाहिए, जो सब कुछ सदा सबको देता रहा। और एक होता था पितृ यज्ञ, हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए घर बनाए, दुकान मकान सब ये सब पूर्वजों ने बनाए ना, तो उनकी स्मृति में, पितरों की स्मृति में उनको पिंडदान आदि जो है, ये पितृ यज्ञ कहलाता है। तो ये सब पांच यज्ञ ग्रस्तों को करने होते थे। अब तो अपने अपने जीवन में देखे ये सब होते थे अपने हाथों से, सब ये हुआ करते थे, अब वो सब समाप्त हो गए। तो किसी ने पूछा एक बार बंबई में हम इस कथा कर रहे थे, तो बोला अब कैसे किसी को कहें कि आओ आपको भोजन खिलाएं, एक को बुलाते हैं तो 50 आ जाते हैं और 15 माले से कैसे बुलाएं। ये तो एक कहने का भाव है, लेकिन हर ग्रस्त को एक आदमी को जितना भोजन होता है उतनी सामग्री निकाल के रखनी चाहिए, जहां सेवा होती हो भोजन की, चाहे गरीबों का भोजन होता है, साधुओं का भोजन होता है, भंडारा होता है, जहां वहां जाके दे देना चाहिए। ये घर से कुछ निकलना चाहिए तो हमारे जीवन से एक यज्ञ हो जाता है, ये यज्ञ निश्चित रूप से होना चाहिए। ये सब खत्म हो गए यज्ञ, इसलिए यज्ञ जब खत्म होते हैं ना तो आदमी को पहले चिंता होने लगती है। ये चिंता हमारे को क्यों आई, क्योंकि हम चिंता कब होती है आदमी को, जब वो जो चीज हमको करनी है वो नहीं करते तब चिंता होती है ना। चिंता का कारण यही है कि ये मेरा जवाबदारी मैंने पूरी नहीं की, हमको मालूम नहीं। सब लोगों को चिंता आज करती है, ये चिंता है कि हमारे अपने जो 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 विधान के शास्त्र के कर्म है वो हमने छोड़ते छूट गए, तो उसको वापस कैसे किया जाए। तो देव यज्ञ का मतलब रोज आत्मा का चिंतन करना चाहिए, रोज बैठ के स्मरण करना चाहिए। शरीर के लिए भी कुछ टाइम रोज निकालिए, मैं आपको कह रहा हूं क्योंकि आपसे बहुत काम है, लेकिन शरीर को भूलिए मत। ये शरीर कल साथ नहीं देगा तो काम कैसे चलेगा। तो शरीर के लिए कैसे भी टाइम निकालना चाहिए। एक अंग्रेज आया हमारा भक्त 20 साल के बाद वापस इंडिया में, मुझे बोलता है आश्चर्य लगा। मैंने क्या आश्चर्य लगा, बोला पहले आपके देश में लोग साइकिल के ऊपर चढ़ के जाते थे सुबह सब्जी लेने, अब सब लोग कार में जाते हैं सब्जी लेने, वापस में आते हैं लिफ्ट के ऊपर घर में जाते हैं, फिर खड़ी हुई साइकिल को एक आधा घंटा चलाते, पहले साइकिल पे जाते या पहले साइकिल चला के जाते थे तो कसरत हो गई, व्यायाम हो गया, तेल भी बच गया, काम भी हो गया ताजा। अब जाते गाड़ी में, लिफ्ट में जाएंगे, ऊपर जाके खड़ी हुई साइकिल को आधा घंटा चल, पर आपके देश ने बहुत तरक्की की है। सुबह वो कन्हैया सुबह हमको साइकिल पे आया, हमको अच्छा लगा, भाई कोई बच्चे साइकिल चलाते हैं तो अच्छा व्यायाम है, बहुत अच्छा। हमको तो वो एक कभी तो मैं धनी आदमी हूँ साइकिल के कैसे चलाए, भैया आधा घंटा चला लिया करो साइकिल, जाए अच्छे रोड पे स्वस्थ अच्छा रहेगा, उसको इसकी चिंता मत करो, गाड़ी तुम्हारी है खड़ी रहने दो। एक में मैसेज जगह मुझे आश्चर्य लगा, मंदिर के बाहर सरदारों में खासतौर पर गुरुद्वारे में एक आदमी बाहर बैठा है, जो जूता उतारता है उसके जूते को पॉलिश करता है, वो आता है उसको जूता देता है, वो दिखा रहा है फोटो में मेरे को क्लिप भेजी। और जब वहां से बाहर निकला तो ड्राइवर उसकी मर्सिडीज लाके खड़ी की और गाड़ी के पीछे बैठ के बांस गया, लेकिन मंदिर में आया तो वो सेवा जूते को साफ करने की कर रहा था। और भगवान श्री कृष्ण भगवान होते हुए भी महाराज युधिष्ठिर के यज्ञ के अंदर सेवा क्या स्वीकार की कि साधु संतों के चरण पादुका को संभाल के रखूंगा, वो भोजन करेंगे तो उनके पत्थर उठाऊंगा। अब ये सेवा भगवान ने क्यों ली, दिखाने के लिए कि बड़ा आदमी वो है जिसको छोटे होने में डर नहीं है कि मैं छोटा थोड़ी हो जाऊंगा। साइकिल के ऊपर मैं स्वस्थ के लिए चढ़ के आधा घंटा चला के आ जाऊं तो कोई इसमें बुराई नहीं है, लेकिन हम ये कर नहीं सकते। एक संत मुझे कह रहा था, एक सेठ का समय थोड़ा ठीक नहीं था, उसकी गाड़ी में बैठा मई जून के महीने में, बोलता शीशा मत उतारो महाराज। अरे भैया दम घुट रहा है, बोला लोग कहेंगे गाड़ी में सेठ की एसी नहीं है, मेरी बदनामी हो जाएगी। अरे भाई तेरी एसी के टेजी में मेरा का दम घुट रहा है भाई, सीधा नीचे करो। तो ऐसे झूठ मूठ का जीवन में बना के जरूरत नहीं है, नेचुरल जीवन में कुछ शरीर का चिंतन करना चाहिए। हमसे नहीं होता है, हम अनुभव से कहते हैं, करते हैं तो सुखी रहते हैं। जितने जाते घूम के आते तो समझते हैं काम हो गया, नहीं गए घूमे तो लगते बीमार है। तो ये कैसे भी निकल, और फिर बच्चों का टाइम, एक माँ आदमी किसी ने बच्चे को भेजा के बेटा तुम्हारे लिए गिफ्ट भेजी मैंने, ये प्रेजेंट है। उसने चिट्ठी में लिखा पिताजी प्रेजेंट नहीं चाहिए, प्रेजेंस चाहिए, आपकी जरूरत है, आपकी चीजों की जरूरत नहीं। तो हमारे को असल में बच्चों को कुछ ये अच्छा आपने बताया कि परिवार पूरा गया ब्रजमंडल में, तो महीना 20 दिन साथ रहा ना, तो जब भी छुट्टियां हैं टाइम निकाल के आपस में टाइम बांट लो, परिवार वाले 10 दिन निकल के चले जाओ, कभी गए भाई वृंदावन का दर्शन किया या हरिद्वार में गंगा स्नान किया कि जगन्नाथपुरी का दर्शन किया। अब ये साल आने वाले साल में नव कलेवर है, जो अधिक मास आएगा वो आषाढ़ का अधिक मास आषाढ़ का रहेगा। जब अधिक मास आषाढ़ में आता है 16 साल 15 साल के बाद, तो भगवान जगन्नाथ जी का नव कलेवर होता है, पूरा भगवान जगन्नाथ जी का नया श्री विग्रह नया लाते हैं दारू ब्रह्म के रूप में, तो वो साठ बड़ी प्रक्रिया होती है उसकी। तो ये चार धाम है हमारे, जगन्नाथपुरी द्वारका रामेश्वर बद्रीनाथ, तो कभी न कभी जाके ये प्राकृतिक इतने हैं, वहां जाओ तो आप देखो कि थोड़े दिनों के लिए हम उधर जाते हैं, दिन कौन सा है किसी को पूछते हैं, टाइम कितना है किसी को, न टाइम का पता लगता है न दिन का पता लगता है। जहां काल भूल जाए, देश और काल भूल जाए, तो इसका मतलब आप बहुत आनंद में हो, तब ये बात होती है, नहीं तो तब चिंता रहती है, चिंता मुक्त हो जाते हैं। कभी समय निकालना चाहिए, परिवार के साथ जाना चाहिए, ये भी बहुत जरूरी है। ये अंग हमारे जीवन में नहीं है, इसलिए हमने आपके आने से पहले ये कहा था कि आत्मा का चिंतन छोड़ दिया, शरीर के ध्यान नहीं दिया, परिवार के लिए भी टाइम नहीं बच गया, चौथी चीज हमारे को पैसे की जरूरत है, वो चौथे नंबर के, आत्मा शरीर परिवार पैसा, हमने पैसे को पहला नंबर दे दिया, तीनों को भूला दिया, इसलिए शांति चली गई, स्वस्थ चला गया, परिवार का प्रेम और संगठन चला गया। ये हमने एक एक चीज को पाने के लिए, इसलिए बड़े घर हैं, बड़ी गाड़ियां हैं, बड़ा पैसा है, लेकिन घर में प्रेम का वातावरण नहीं है, फैमिली ढाई भी आदमी नहीं है घर में, घर बड़ा है लेकिन आदमी ढाई भी नहीं है, एक की दूसरे से बनती नहीं है, एक दूसरे का मुंह देखता नहीं है, ये सब कुछ है, शांति नहीं है, सुख नहीं है। अरे जो चीज सबको साथ, एक घर में मैं गया 50 आदमी का फोटो दिखाया, ग्रुप फोटो, मैंने बोला कि अपनी पढ़ाई के समय का, बोला नहीं ये हमारे 7 बेटे हैं, ये 7 बहुएं हैं और ये इनके बच्चे हैं, ये हमारा पूरा परिवार है, उन 50 लोग साथ रहते हैं, कच्छ के थे और मिले थे मेरे को आंध्र प्रदेश में कहीं, और 7ों के बंगले ऐसे 7 एक जगह, लेकिन बोला रसोई हमारी एक जगह, दादी ने बोला रसोई हमारे यहाँ बनती, और मैं ऐसे कैसे हुआ, अंदर देखूं तो बहुत सुंदर लक्ष्मी नारायण का मंदिर पूरा घर के अंदर, अब भोजन यहाँ बनता है, भगवान को भोग लगता है, फिर पूरा परिवार काम से खाता है, और जब तक माता जी सबको साथ चला रही, ये बहुत बड़ी उपलब्धि वैदिक संस्कृति की ये थी कि हमारा संगठित परिवार हुआ करते थे। फिर एक आदमी चला गया, मैं 15 दिन के लिए चिंता नहीं थी, अब हम इतने टूट फूट गए हैं, न्यूक्लियर फैमिली होगी, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इधर, प्रोटॉन उधर, पत्नी इधर तो पति उधर, तो कहां से बच्चों को देखभाल करने वाला भी कोई नहीं, बच्चों को चाचा दादा भी नहीं मिलता है, तो ये बहुत बड़ी समस्या है। तो खुशी होती है आपके परिवार में, अजीरा भाई के घर गए थे, 3 बच्चे 2 बच्चे साथ रहे, यहाँ देखे पिता माता सब साथ में रह रहे, कोई बात नहीं, 2 के 4 घर लो, भगवान ने धन दिया, लेकिन कहीं दूर भी रहते हो तो सप्ताह में एक दिन भोजन साथ किया करो भाई, जो साथ खा सकते हैं वो साथ रह सकते हैं। सिकंदर जब आया था भारत के ऊपर आक्रमण करके, तो अपने एक गुप्तचर को देखा कि जाके देखो पोर्स की सेना में क्या है, तो 5 जगह भोजन बन रहा था, पूछा भी इधर क्यों बन रहा है, बोला ये उनके साथ नहीं खाते हैं, बोला ये क्यों बन रहा है, बोला ये उनके साथ है, बोला अच्छा, आके बोला सिकंदर जी वह 5 जगह पे अलग भोजन बनता है, बोला साथ क्यों नहीं खाते हैं, अगर साथ नहीं खा सकते तो साथ लड़ भी नहीं सकते, इसलिए हम इनके ऊपर विजय प्राप्त कर देंगे। तो साथ खाना भी बहुत बड़ी चीज है। जब परिवार में पहले सब लोग बैठते थे घड़ी, घर की बड़ी दादी सबको परोस के खिलाती थी, तो एक प्रेम का वातावरण होता है, और सारे डिफरेंसेस जो है ना वो भोजन के समय समाप्त हो जाते हैं, तो वो भी खत्म हो गया। अभी तो कोई टीवी के सामने और कोई बीवी के सामने भोजन की परिभाषा ही बदल गई है, और इसलिए कितना खाते हैं ये पता नहीं, हाथ इधर जाता है इधर जाता है, आंख इधर होती है, तो दिमाग को भी पता नहीं लगता है कि कितना खाया है। कोई देता है तो कहते तो सब सिस्टम ही चेंज हो गया। तो ये जीवन के अंदर थोड़ा सा इसको टाइम मैनेजमेंट बोलते हैं, आज आधुनिक अंग्रेजी भाषा में टाइम मैनेजमेंट, समय अपने को मैनेज करो, अपना समय कौन खा के जाता है, जो मेरे सुख के लिए समय है वो कहाँ जा रहा है। बहुत से लोगों का समय टीवी खा जाती है, दो दो घंटे टीवी, बच्चों तो दो दो घंटे कार्टून देखते रहते हैं, कार्टून देखते रहते हैं, फिर बच्चे घर पर कार्टून बनेंगे जो देखेंगे वही बनेंगे, फिर संभालना मुश्किल हो जाते हैं। अरे भाई तो भगवान की भक्ति देखेंगे तो कीर्तन गए, कुछ भी पहले तो रामायण चलती थी तो बच्चे जो सुबह वो तो तीर कमान बनाते थे, वो देखते थे तो भगवान की याद आती थी, अब कार्टून देखते तो कार्टून, तो वो अच्छी चीजें भी, अच्छे पुस्तक शास्त्र घर में होना चाहिए। परिवार बैठ के पांच मिनट, जैसे हम अभी बैठे हैं, परिवार के पांच लोग बैठ के भगवान के नाम का कीर्तन 10 मिनट कर लो प्रसाद से पहले, फिर मिलके प्रसाद खा लो, ऐसा वातावरण घरों के अंदर आध्यात्मिक बनाओ। ये मजबूरी है, ये आवश्यकता है, ये अनिवार्य है, क्योंकि आपके बच्चे ये नहीं देखेंगे तो उनके उनसे तो आपने तो फिर भी थोड़ा है, पुराने पूर्वज आपके बच्चों के लिए स्कूल में भी कुछ नहीं है, जहां आप रह रहे हैं समाज में भी बाहर कुछ नहीं है, वो आध्यात्मिक बिल्कुल अभाव के कारण चरित्रता के स्तर को, वैल्यूज को, मूल्स को, परंपरा सारी को भूल जाएंगे। इसलिए आपको घर में ऐसा वातावरण बनाना पड़ेगा जिसका प्रभाव बच्चों के ऊपर पड़ेगा, बच्चे आपको देखेंगे तो आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं, वो अपने आप करने शुरू कर देंगे। तो घरों के अंदर आध्यात्मिक माल, और ये काम माताओं को करना पड़ेगा। किले की आध्यात्मिक धर्म के किले की आखिरी दीवार माता है, ये तो सुबह काम पे चले जाते हैं रात को आते हैं, घर के अंदर आध्यात्मिक वातावरण बनाना आपका धर्म है। आप ऐसा वातावरण बना के रखोगे तो बच्चों के अंदर संस्कार आएंगे तभी हमारी परंपराएं आगे चलेंगी, नहीं तो आगे चल के आजकल के बच्चे तो इसको कहते हैं नेक ब्रेक जनरेशन, सारा दिन टीवी वीडियो के ऊपर, मोबाइल के ऊपर, गर्दन सीधा नहीं होता, गर्दन ऐसे ही चलता है सारा दिन, देखा वो नेक हमारी ब्रेक करते हैं माँ बाप की, लेकिन वो 10,000 की 40,000 की चीज उठा के ऐसे घूमते हैं जिसकी कोई वैल्यू नहीं। अच्छा वो तो ऐसे क्या कहते हैं उसको, टेबलेट के उठा के सारा दिन दुनिया से इसका बात करते रहते हैं, तो ये उनके पास टाइम नहीं। अगर ऐसा वातावरण नहीं घर में बनाया, घर के अंदर ऐसा वातावरण आध्यात्मिक बनाना अति आवश्यक है। ये हमारा धरोहर है, धन है, यही हमारी महानता थी। ये हमसे चला गया तो फिर कुछ हमारे पास नहीं रहेगा, यही हमारी पहचान है, इसको नहीं भूलना चाहिए, ये हमारी आध्यात्मिक असली पहचान है, इसको कभी नहीं भूलना चाहिए। इसको ठीक तरह से अपनी परंपरा में अपने बच्चों को देके जाओ, तभी ये कुल परंपराएं चलेंगी और तभी ये धर्म सुरक्षित। आत्मा का धर्म तो यही है, शरीर के धर्म तो अलग अलग हो सकता है लेकिन आत्मा का एक ही धर्म है कि किसी तरीके से भी संगठित सब बैठ के भगवान का स्मरण करें। धन्यवाद, समय बहुत, आपको कल काम पे जाना है, किसी का कोई प्रश्न कुछ जिज्ञासा है तो पूछिए, फिर भी कोई 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 प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है तो कीजिए। ये हमारे ये बच्चों को भी हमारे तो इनको सुबह जाना है अभी, हाँ, हाँ, आपका तो अभी आना शुरू हुआ, चलेगा, आपका स्वागत है। कोई प्रश्न पूछ लीजिए, कोई जिज्ञासा प्रश्न कर लीजिए, उसके ऊपर चर्चा करें थोड़ी। बेटी बाप पूछे, आपका कोई प्रश्न है? छोटी, क्या नाम है आपका?
हिमांशी।
हिमांशी, हिम का मतलब सोने का अंश है, हिम का मतलब सोना होता है, हिम हेम अंत, सोने का अंत है। कोई प्रश्न है आपका? सोचो नहीं, और किसी का कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा?
मुझे आपने बताया था जो ये अपना भगवान का जो मैंने ये देवी भागवत में लिखा था कि जब राधा जी का वर्णन कर रहे हैं रेवती जी वगैरह, तभी बाहर खड़े थे कृष्ण भगवान और बलराम, वो सुनते सुनते उसका
जगन्नाथ हो गए।
हाँ
सही,
तो आप कुछ अलग
तीन कथाएं हैं जगन्नाथ के इस रूप की, तीन कथाएं जगन्नाथ के इस रूप की है। एक कथा ये है कि द्वारका के अंदर द्वारका की सारी भगवान श्री कृष्ण की पटरानियां माँ रोहिणी के पास जाके कहती हैं कि ये हमारे पास होते हैं, सोए हुए हमारे कक्ष में हैं, लेकिन रात को सोए सोए गोपी राधा ऐसे चिंतन करते रहते हैं, हमारे पास लेकिन चिंतन उनका रहता है। तो आपने ब्रज के अंदर, क्योंकि रोहिणी ब्रज में रही थी, बलराम भी ब्रज में रहे थे, नंद बाबा और वसुदेव ये आपस में कजन ब्रदर हैं, तो इसलिए जब वसुदेव को जेल में डाला तो उसके परिवार के रोहिणी उसकी पत्नी नंद बाबा के घर में रहती थी और गर्भवती थी, तो बलराम जी का जन्म भी वहां हुआ। तो रोहिणी माता को कहा कि आप कृष्ण के वृंदावन के उन सब गोपियों के संग जो प्रेम लीला है उसका वर्णन करो कि वो क्या चीज है जिसको ये अब तक भूल नहीं पाए, और 100 साल वृंदावन से कृष्ण द्वारका गए, 100 साल की पूरी दूरी, 100 साल के बाद दोबारा गोपियों का और कृष्ण का मिलन होता है, और ये परस्पर सदा श्री धाम और राधा रानी का एक दूसरे को है कि 100 साल तक इनका गृह होगा, बाहर की दृष्टि से अलग होंगे। तो रोहिणी माता जी ने कहा कि मैं आपको कथा तो सुनाने जाऊंगी, लेकिन अगर कृष्ण ने सुन ली तो वो यहां रहेगा नहीं, अधिकार ही वृंदावन चला जाएगा, पर उसको आने का नहीं देंगे, व्यवस्था करते हैं उसकी, आप अंदर महल में कथा सुनाओ, दरवाजे के ऊपर सुभद्रा खड़ी रहेगी और दोनों भाइयों को अंदर आने नहीं देगी, आप कथा। और रोहिणी माता ने कथा शुरू की कि भगवान के गोकुल के अंदर बाल लीलाएं थी, जो माता पिता और बड़े बूढ़े गोपों को बड़ा अच्छा लगता था, बच्चा कृष्ण एक बच्चे के लिए उसकी सुरक्षा के लिए पूरे गोकुल को छोड़ के वृंदावन आ गए, एक बच्चे के लिए अपना सब घर बार सब छोड़ दिया, तो कितना बड़ा प्रेम उस बच्चे से वात्सल्य उनका था। फिर ब्रज के अंदर आए, अब ये कथा शुरू हुई, भगवान सुधर्मा सभा में बैठे हैं, ऐसे भगवान से एक बार नारद जी ने पूछा था कि आप भगवान अगर चले जाएं यहां से वापस गोलोक धाम तो ये भक्त आपको कहां ढूंढे, तो भगवान ने उत्तर बड़ा सुंदर दिया था, ना हम चिष्टानी वैकुंठे, ऐसे नहीं है कि तुम मरने के बाद वैकुंठ आओगे तब मेरी मुलाकात होगी, न योगी नाम हृदयेषु वा, ऐसे भी नहीं है कि तुम घर छोड़ के हिमालय में योगी बनो तब मैं तेरे को मिलूंगा, न मरने के बाद मैं मिलता हूँ, न घर छोड़ने से मिलता हूँ, फिर कैसे मिलते हैं भगवान, यत्र गायन्ति मद्भक्त तत्र तिष्ठामि नारद, नारद जहां मेरे भक्त मेरा गुणगान करते हैं वह मैं, तो भगवान का गुणगान भगवान की माँ कर रही है और भगवान नहीं आए तो भगवान का वचन झूठा हो जाएगा ना, तो भगवान चल के वहां आ गए, आ गए तो बाहर सुभद्रा कहते अंदर नहीं जाना है भैया, मैया ने मना किया अंदर नहीं जा सकते हो, बोला अंदर नहीं जा सकते, दीवार का कान लेके तो सुन सकते हैं। अब तीनों ने ऐसे कान लेके सुना, जैसे ही गोपियों के वृह की गाथा रुक्मणी से सुनी कि गोपियां कृष्ण के जाने के समय कैसी पीड़ा का अनुभव किया था, और जैसे खड़ा था कृष्ण ऐसे सकते के आलम में आंखें हाथ, मेरी वजह से मेरे प्रेमी भक्त, असल में जगन्नाथ का रूप, भगवान श्री जगन्नाथ का रूप श्री कृष्ण अपने भक्तों के वृह का रूप है, कृष्ण अपने भक्तों की जुदाई में उनका ये रूप है, आपका कुछ इसको हाथ लगा है, हरि बोल, वही करेगा जो पहले किया था, कथा उसी को करनी पड़ेगी। हरे कृष्ण, क्या हुआ, नहीं अभी जगह जगह नहीं है, नहीं हो गए, अच्छा वो स्लो मोशन है। तो बाहर इनका ये रूप हो गया, उस वक्त नारद जी वहां आए, नारद जी उस वक्त द्वारका में थे, वैसे नारद जी को शराब का 3 दिन से ज्यादा कहीं क्या 3 घड़ी भी नहीं रह सकता है, लेकिन भगवान के धाम में शराब का कोई असर नहीं होता है, तो वहां बहुत समय रह जाते थे, इसलिए नहीं कि शराब का असर नहीं है, लेकिन भगवान के लीला और गुण और उनके दर्शन में इतना अनुग्रह होता था, भगवान इतना उनसे प्रेम करते थे, उनको भेजने के लिए भगवान के जाओ यहां से पता लेके आओ, नारद जी तब मजबूरी जाते थे, नहीं तो वापस वापस आ जाते थे। तो नारद जी ने श्री कृष्ण को, बलराम जी को, सुभद्रा को इस रूप में देखा, तो बोला भगवान जी आपका दिव्य रूप, बस मैं इस धरती के ऊपर लोगों के कल्याण के लिए देखना चाहता हूं, तो भगवान ने नारद जी को ये वचन दे दिया। ये एक कथा है। दूसरी कथा जो हमने वहां आपको बताई थी एक दिन, ये आध्यात्मिक इसका रहस्य है कि भगवान मूर्छित हो गए वृंदावन की स्मृति में, 100 साल पूरे हो गए, तब आगे सुभद्रा का रथ चला, पीछे बलराम जी का रथ चला और उसके बाद कृष्ण का रथ चला। ऐसे ही रथ चलते हैं आज भी जगन्नाथ रथ यात्रा में, आगे बलराम जी होते हैं फिर सुभद्रा और फिर जगन्नाथ। तो वो जब वहां पहुंचे तो भगवान ने जाके राधा रानी को निधि वन में ऐसी स्थिति में देखा कि ये रूप हो गया उनका। तीसरी कथा कि इंद्रदेव महाराज ने जब भगवान की मूर्तियां बनाना शुरू की तो लकड़ी तो समुद्र से मिली, भगवान ही विश्वकर्मा के रूप में आके मूर्ति बनाया, बोला शब्द एक है, जब तक मैं पूरी नहीं करूं आप अंदर नहीं आएंगे। तो वो जब मूर्ति बना रहे तो खटखट का आवाज आ रहा था, जब खटखट का आवाज बंद हो गया तो राजा किसे रहा नहीं गया और राजा अंदर जाने अंदर चले गए। जैसे अंदर चले गए इतनी ही मूर्तियां जैसे आज जगन्नाथ जी इतनी बनी हुई थी वो छोड़ के चला गया। बड़ा मैंने कहा कि आप इसके बीच में, तो अब राजा बोलता है कि वो मूर्ति पूरी बननी थी, ठाकुर जी का विग्रह तैयार नहीं हुआ और ऐसे आप चले गए। उस वक्त नारद ने प्रकट होकर कहा नहीं नहीं, इसी रूप के लिए भगवान ने मुझे वचन दिया था, आप इसी की स्थापना करो, इसी की पूजा होनी चाहिए। इंद्रदेव ने तो चला गया था ब्रह्मा जी को लेने के लिए, ब्रह्मा जी ने आके ये स्थापना की थी, बहुत बड़ा यज्ञ करके इसकी स्थापना की थी जगन्नाथ जी की। और फिर चौथी कथा जगन्नाथ जी की आती है, जब भगवान कुरुक्षेत्र में गए थे सूर्य ग्रहण के समय, तब भगवान के रथ को गोपियों ने खींच के वृंदावन ले जाना था। जो खींचने वाले गोपियों के भाव में होते हैं, रथ के अंदर भगवान जगन्नाथ जी कृष्ण है उसको वो वृंदावन ले जाते हैं, वृंदावन भक्त का हृदय है। और भगवान जगन्नाथ को जो जग रथ को खींचते हैं वो गोपी के भाव से अपने हृदय में बिठाना चाहते हैं। ये रथ यात्रा का ये चौथी इसकी कथा है। तो ये तो बहुत, ये पूरा पुरुषोत्तम महात्म्य स्कंद पुराण के पुरुषोत्तम महात्म्य इसका बहुत विस्तार से वर्णन है कि दारू ब्रह्म के रूप में भगवान जगन्नाथ 10,000 साल तक कलयुग में पति तपावन के रूप में रहे, और विशेष रूप से जगन्नाथ जी लकड़ी के इस नीम की लकड़ी से इनका विग्रह बनता है। और आज भी नहीं तो लाखों लोग रोज का जाते हैं दर्शन करने, और इतने लोगों के लिए प्रसाद हर समय तैयार मिलता है, दुनिया में इतना प्रसाद कहीं तैयार नहीं होता है, 1 लाख आदमी खाए इतना प्रसाद रोज दे, और सारा प्रसाद मिट्टी के मटके में बनता है, और मिट्टी का मटका एक बार बनता है भोग लगता है फिर खत्म, और एक पूरा समाज है जगन्नाथ की सेवा का मटके बनाने वाला, और वो प्रसाद बनेगा भगवान को, और प्रसाद बनाने वाले 500 से ज्यादा जो रसोई है आप कभी ले जाएंगे जगन्नाथ आपको दिखाएंगे जाके, ऊपर के मटके का पहले पकेगा, 5 मटके रखेंगे तो ऊपर पहले पकेगा नीचे वाला बाद में पकेगा, और वो सारा वो पकाते हैं सब शुद्ध घी में और शुद्ध प्रसाद, और वहां की पकी हुई दाल के रिसर्च किया किसी ने, कुकर में पकी हुई दाल का भी कम दिया और जगन्नाथ की दाल का जगन्नाथ से लाके दिल्ली में दिया, तो उसमें घंटे भी कुछ लग गए। जगन्नाथ की दाल में 97% सारे पौष्टिक पदार्थ सुरक्षित थे क्योंकि मटके में पकी हुई थी आग के ऊपर, और कुकर की दाल में 13% केवल पौष्टिक पदार्थ, बाकी सब नष्ट हो गए क्योंकि प्रेशर से फट गए, असली पदार्थ बाहर निकले ही नहीं केवल नरम हुआ। तो उन्होंने रिसर्च की थी उसका प्रसाद जगन्नाथ। तो जगन्नाथ भगवान की ऐसी स्थापना इंद्रदेव महाराज के द्वारा बाद में हुई। तो ये सब कथाएं तो एक नहीं 4-5 कथाएं हैं। पति तपावन के रूप में भगवान जगन्नाथ श्री कृष्ण अपने भक्त के विरह में, भक्त में विशेष रूप के से राधा के विरह में, इसलिए चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण राधा के भाव में आए, इसलिए वो वृंदावन न रहकर जगन्नाथपुरी रहे, क्योंकि जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर में जाते हैं तो मन राधा जाती है कृष्ण को मिलने, 4 आंखें होते हैं राधा और कृष्ण के, इसलिए महाप्रभु विशेष रूप से राधा के भाव में रोज जगन्नाथ जी का दर्शन करने जाते हैं। और वही जगन्नाथ तो अद्भुत, उनकी लीलाएं अपने आप में बहुत विलक्षण है। आज तो पूरे विश्व के अंदर जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलती है, कैसे भी ये इस्कान संस्था का सबसे बड़ा एक कार्यक्रम, दुनिया के रशिया में 50 रथ यात्राएं निकलती होंगी, मैं मलेशिया में 35 रथ यात्राएं निकलती हैं साल में, तो तो हर एक जगह वर्ष यात्रा भगवान की निकलती है। ये पहली ठाकुर जी विग्रह स्थापित 67 में ला जो हुए सैन फ्रांसिस्को में, यही विग्रह स्थापित हुए और उसी की रथ यात्रा 67 में पहली बार भारत से बाहर निकली अमेरिका में, और वही गोरे लोगों ने निकली, वही नाचे वही गाए। तो इसको जगन्नाथ कहते हैं जो सबका नाथ हो। अब जगन्नाथ को जगन्नाथ के रूप में विश्व सारे में स्थापित कर दिया, नहीं तो पंडानाथ बन के उधर ही बैठे हैं, पंडे किसी को जाने भी नहीं देते हैं। तो जगन्नाथ बड़े दयालु हैं, बहुत दयालु हैं। हमने जीवन में देखा है जगन्नाथ बहुत बड़े दयालु हैं, उधार है, बहुत उधार है। और किसी का कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा, कुछ प्रश्न? जनक भाई बता, जनक शब्द पहली बार महाराज निमि के लिए उपयोग में आया, सूर्यवंश के महाराज निमि। वशिष्ठ जी के क्रोध के कारण शरीर छूट गया तो उसका मंथन किया गया शरीर का। उसने बोला मैं शरीर में नहीं रहूंगा, तो उसका नाम हुआ विदेहराज, देह में नहीं रहना चाहता। और फिर उसके शरीर का मंथन किया गया तो जो निकला तो उसको बोला जनक, कि इसका जन्म सामान्य नहीं हुआ है, तो जनक कहलाया पहला। और उसने जो नगर बताया उसका नाम हुआ मिथिला, मिथिला जनक और विदेहराज। ये पूरा कुल चला इसकी 21वीं-22वीं पीढ़ी में। वो महाराज जनक है जो सीता माता जी के पिता है। तो जनक एक टाइटल है, आदमी का नाम नहीं है, जैसे प्रेसिडेंट है कोई भी बदलता है, तो जनक के कुल का नाम है। तो जनक का मतलब जिसका जन्म अद्भुत हो। तो वो फिर 22वीं पीढ़ी में जो जनक माता सीता का, माता सीता को इसलिए विदेही कहते हैं, जनक को विदेहराज कहते हैं, मिथिला नरेश कहते हैं, लेकिन उसका नाम क्षीरध्वज, जो माता सीता के, सीता के पिता का नाम है क्षीरध्वज महाराज। तो यह जनक की उत्पत्ति भागवत, तो हर एक नाम की उत्पत्ति हमको ढूंढनी चाहिए अपने अपने की, उसमें भी बहुत बड़ा रहस्य है जीवन में। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न, जिज्ञासा, कोई प्रश्न?
जनक, जनक राजा के ऊपर से याद आ रहा है कि अष्टवक्र ऋषि ने जो उसको बताया,
अष्टवक्र, अष्टवक्र का मतलब है जिसके शरीर के अंदर 8 जगह पे टेढ़ है, तो विकलांग था वो। महाराज जनक की दरबार में चला गया तो उसके अंदर बैठे हुए मंत्री आदि सब हंस पड़े। तो उसने कहा महाराज क्या कथाई चमार और कथाई चमार और मलेट क्यों बिठा दिए हैं आप? बोले ये मंत्री हैं मेरे, ये ऋषि हैं। बोले ये ऋषि हैं मंत्री हैं तो इन्होंने मेरी आत्मा को तो नहीं देखा, मेरे शरीर को टेढ़ा देखा, कसाई की तरह मांस को देखा और हड्डियों को देखा जैसे चमार देखता है, चमड़ी को देखा, इन्होंने मेरी आत्मा को तो नहीं देखा। तो महाराज जनक ने कहा कि मेरा शर्त ये था कि मैं घोड़े में एक तरफ से रकाब में पांव रखूं और घोड़े के ऊपर बैठ जाऊं, उससे पहले मुझे आत्मज्ञान कोई दे। तो कोई दे नहीं पाया। महाराज जब ये बात कही कि ये तो सर आपके नहीं, बोला महाराज आप पांव रखिए, पांव रखा। बोला आप तो मैं गुरु से शिक्षा लेना चाहते? बोला हाँ। तो गुरु दक्षिणा क्या दे रहे हो? बोला महाराज ये राज। बोला राज तुम्हारा थोड़ी है, तुम्हारे पिताजी ने तुमको दिया है। बोला ये शरीर? बोला ये शरीर पत्नी के हवाले तुमने कर दिया, जब शादी तुम्हारा है नहीं तो कहां से दोगे? फिर तुम्हारे पास है क्या जो तुम दोगे? बोला यही आत्मज्ञान है कि तुम्हारा न शरीर है संसार में, न तुम्हारा आत्मा जो है उसको तुम पहचानोगे, तब तुमको आत्मज्ञान होगा। चढ़ने से पहले एक शब्द के अंदर उसका उत्तर दे दिया। तो ये अष्टावक्र का जनक की दरबार में जाने का वर्णन है।
उसने पूछा था प्रश्न जनक ने कि मैं सपने में जो मैंने देखा कि मैं भीख मांग रहा हूँ,
हाँ,
और मैं अंदर में राजा हूँ, तो दोनों में किया है।
हाँ, ये सपने का भी उसने बहुत, ये भी उत्तर है कि क्या उत्तर दिया उसका?
दोनों झूठ है, सपना भी झूठा था, जो राजा है वो भी झूठ
है। सपना इसलिए झूठा है कि वो तो आपने सूक्ष्म शरीर से देखा, वो तो आंख खुली तो सपना सपना समाप्त हो गया। और ये राज भी एक आदमी राजमहल जाके सो गया, चौकीदार ने कहा उठो ये तो धर्मशाला है क्या, यहाँ पड़े कोई धर्मशाला है? बोले क्यों, क्या बात है? बोले महाराज का महल है। बोले चलो महाराज से बात करो। महाराज ने सोया था, ये मुझे उठा रहे हैं, कहते राजा का महल है, धर्मशाला नहीं है। तो ये आपका महल है? बोला जहाँ मेरा महल है। बोला कहाँ से आया? बोला मेरे पिता ने दिया। बोले तुम्हारे पिता को किसने दिया? बोले मेरे पिता ने दिया। बोले तुम जाओगे तो किसको मिलेगा? बोले मेरे बेटे को। बोले इसी को तो धर्मशाला बोलते हैं, जो एक का नहीं हो, एक से दूसरे पे जाए तो मैं यहाँ सोया हुआ तो कौन था? कौन सा तुमने परेशानी होगी? एक आदमी रस्ते में बैठा था, महाराज की सवारी आ रही थी। बोला हटो यहाँ से, महाराज का आदेश है, हट जाओ यहाँ। बोला ठहरो, तुम्हारे महाराज से पूछता हूँ। महाराज का आदेश सबके ऊपर चलता है? बोला चलता है। महाराज की सवारी जब आ गई तो क्या महाराज आपका आदेश सब पे चलता है? बोला हाँ महाराज सब पे चलता है, मैं राजा हूँ यहाँ का। बोला मेरे को मच्छर काटते हैं, उसको बोलो मना करो कि मेरे को नहीं काटे। अरे तो मच्छर पे तेरा आवाज चलता नहीं आदेश, बाकी मुझे कहते हो कि यहाँ से हटा। बहुत आश्चर्य लगता है कभी, ऐसी बातें ऐसी अद्भुत होती हैं अपने आप में। राजा ने किससे पूछेगा भगवान कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या करता है, कहाँ है, कैसे मिलेगा, क्या करता है? तो मन से बेचारा चिंतित हो गया। बोला महीना एक छुट्टी दे, जाके शास्त्र पढ़ूं। तो बच्चे ने एक देखा कि पिताजी बहुत बड़े गंभीर हैं, बड़े दुखी हो रहे हैं। पिताजी क्या है? बोला राजा ने ये दो तीन प्रश्न पूछे कि भगवान कहाँ है, कैसे मिलेगा, करता क्या है। बच्चे ने कहा पिताजी ये तो मैं उत्तर दे सकता हूँ, मुझे ले चलो। बच्चे को राजा के दरबार में ला, राजा ऊपर सिंहासन है, बच्चा नीचे बैठा। मंत्री उत्तर दोगे? बोला मेरा बच्चा देगा महाराज। बोला बच्चा देगा? हाँ बेटा उत्तर दो। बच्चा कहता है महाराज घर में मेहमान आता है, उसको कुछ खाने पीने के लिए पूछते हैं, जलपान का पूछते हैं, सीधा प्रश्न करते हैं। हाँ हाँ नहीं आपको पूछना चाहिए, क्या खाऊंगा? मैं बच्चा हूँ, दूध पीऊँ। बच्चा दूध ही पीता, दूध लाए चांदी की कटोरी में दूध आ गया। तो बच्चा दूध में उंगली घुमा रहा है, पी नहीं रहा है, दो मिनट, चार मिनट, दस मिनट बच्चा ऐसे कर रहा है। तो आखिर राजा ने कहा अरे भाई दूध पियो, देर मत करो, प्रश्न का उत्तर देना है। बोला मैं इसमें ढूंढ रहा हूं मक्खन कहाँ है। बोला मक्खन इसमें कैसे? बोला दूध में मक्खन होता है। बोला दूध में मक्खन होता है? दूध में मक्खन होता है तो क्यों नहीं मिलता है? कहाँ है दूध में मक्खन? सारे दूध के मक्खन है। बोला महाराज फिर आपका प्रश्न क्या है पहला? बोला भगवान कहाँ है? बोला सारी संसार में भगवान है, कहाँ नहीं है? कहाँ नहीं है? जब दूध में मक्खन सब जगह पे है, जैसे भगवान तो कण कण में समाया हुआ है, दूध में मक्खन है कि नहीं है? है ना? तो सब भगवान सब जगह है। तो बोला दिखता क्यों नहीं? बोला दूध में मक्खन क्यों नहीं दिखता? बोला कैसे दिखेगा? बोला दूध को गर्म करो, रात को उसमें जामुन डाल दो, सुबह दही बन जाएगा, फिर मंथन करो तब मक्खन निकलेगा। बोला फिर आपका महाराज दूसरा प्रश्न क्या है? बोला दूसरा प्रश्न ये है कि भगवान मिलेगा कैसे? बोला मक्खन कैसे निकलता है? ऐसे ही भगवान मिलेगा, तुम थोड़ी सी तपस्या जीवन में कर लो, फिर गुरु के शरण में बैठ के नाम का ले लो उससे, फिर बैठ के उसका जप का मंथन करो तो जीवन में भगवान मिल जाएगा तेरे को। मक्खन मंथन करने से मिलता है, तो मंथन का मतलब है जीवन में साधन। तो बोले भगवान करता क्या है? बोला गुरु बन के पूछ रहे हैं कि शिष्य बन के पूछ रहे हैं? पूछने वाला तो शिष्य होता है, बताने वाला गुरु। बोल फिर महाराज मैं नीचे बैठा हूँ, आप ऊपर बैठे हैं, आप नीचे आइए मैं ऊपर जाता हूँ फिर बात करूंगा। वो जाके सिंहासन बैठा, महाराज नीचे बैठा। बोला आप क्या प्रश्न है? बोला भगवान करता है। बोला करता ये है कि कभी मेरे को ऊपर बैठाता है, कभी तेरे को। वो उसके काम को कोई नहीं समझता है, कभी किसी को ऊपर बैठाता है, कभी किसी को नीचे बैठाता है। तो ये भगवान की दिव्य लीलाओं को समझना सरल नहीं है, इसके लिए थोड़ा सा आध्यात्मिक जिज्ञासा पैदा करनी चाहिए। और मैं तो वही दोबारा कहता हूँ, घरों के अंदर आध्यात्मिक वातावरण बनाओ, बच्चों के लिए शिक्षा अति आवश्यक है और कहीं बाहर नहीं मिल रही है, ना स्कूलों में है ना कहीं, बाकी सब कंप्यूटर इसके ऊपर कुछ भी नहीं। और बच्चों को भी बचपन में 8-10 साल तक जो आपने संस्कार दिए वही संस्कार उनके पक्के हैं, उसके बाद वो तो सिर्फ कंप्यूटर की बात और अपने पेरेंट्स की बात मानते हैं, आपकी बात नहीं सुनेंगे, वो तो नेट से सब कुछ उसको समाचार मिले। 8-10 साल तक जितना आपको संस्कार देना है उतना दे दो, वही अच्छे से अच्छी नींव डल गई, फाउंडेशन अच्छी रही तो उनके संस्कार बचेंगे, नहीं तो जैसे मातृभाषा होती है ऐसे ये संस्कार भी माता के बचपन में दे दो तो अच्छा है। इतने घर के अंदर ऐसा वातावरण सब उस जगह बनाना अति आवश्यक है और अनिवार्य है। धन्यवाद। हरे कृष्ण। आप सब लोगों का फिर भी धन्यवाद। जो कहा गया पुरुषार्थ का डब्बा और ये दे दीजिए मैगजीन इनको।